ऋग्वेद संहिता के मात्र 3 सूक्त संपूर्णतः पर्जन्य के लिए कहे गए हैं तथा इनका नाम भी मात्र 30 ही बार आया हुआ है। पर्जन्य के स्तवन का आधार शुद्ध भौतिक है। निरुक्तकार यास्क के अनुसार त्रिप धातु से इस शब्द को व्युत्पन्न माना गया है। पर्जन्य की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं। वृष्टि का देवता, पर्जन्य वृष्टि करने वाला देव है। इसकी प्रधान विशेषता जल बरसाना ही है। यह जल में रथ पर आरूढ़ होकर भ्रमण करता है। जल चर्म को ढीला करके उसे नीचे की ओर खींचकर वृष्टि करता है। पर्जन्य शीघ्र वृष्टि कराने वाला देवता है। जब पर्जन्य आकाश को वर्षा युक्त मेघ से युक्त कर देता है तब यह सिंह की भांति गर्जन करता है। पर्जन्य अधिक समय तक होती हुई वर्षा को रोकता है। विश्व का पिता, पर्जन्य को विश्व का पिता एवं पृथ्वी को माता कहा गया है। पर्जन्य ही वर्षा द्वारा पृथ्वी में जल रूपी वीर्य धारण करके लोगों के लिए अनादि खाद्य पदार्थों की उत्पत्ति का प्रधान कारण बनता है। अतः इसको पिता कहना अनुचित नहीं है। कार्य, पर्जन्य देव का मुख्य कार्य तो वृष्टि करना है, परंतु साथ ही कतिपय अन्य कार्य भी इसके द्वारा किए जाते हैं। दुष्काल को नष्ट करना, वज्रपात द्वारा वृक्षों को नष्ट कर डालना तथा राक्षसों का वध कर डालना भी पर्जन्य देवता के प्रधान कार्यों में गिने जाते हैं। पर्जन्य देव की महाप्रलयकारी शक्ति के सामने संपूर्ण चराचर जगत नतमस्तक हो जाता है। पृथ्वी को सत्वयुक्त बनाना, औषधियों को पल्लवित पुष्पित करना इसकी प्रमुख विशेषताएँ हैं। देवताओं से संबंध, पर्जन्य अन्य अनेक देवताओं के साथ घनिष्ठ रूप से संबंधित है। मरुत एवं वात देवताओं से यह अपना अभिन्न संबंध रखता है। ऋग्वेद के 2 मंत्रों में इसकी स्तुति अग्नि के साथ भी की गई है। वर्षा के देवता के रूप में इसकी तुलना इंद्र से की गई है। पृथ्वी को पर्जन्य की पत्नी कहा गया है, परंतु इसकी पत्नी के रूप में वर्षा का भी उल्लेख मिलता है। पर्जन्य को सोम का पुत्र कहा गया है। प्राकृतिक आधार, इस तथ्य से किसी भी विद्वान को आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि पर्जन्य देव निश्चित रूप से भौतिक पर्जन्य अथवा बादल के मानवीकृत रूप हैं। प्राचीन ऋषियों को वर्षा एवं गर्जन की शक्ति के रूप में पर्जन्य देवता का दर्शन हुआ है। वरुण, ऋग्वेद के देवताओं में वरुण का स्थान महत्वपूर्ण है। यद्यपि संपूर्ण ऋग्वेद में मात्र 12 सूक्त ही वरुण की स्तुति एवं गुणगान करते हैं, तथापि इंद्र के अतिरिक्त अन्य कोई भी वैदिक देवता वरुण से महत्तर नहीं दिखलाई पड़ता। वरुण शब्द ब्री आवरणे धातु से निष्पन्न हो सकता है। इस प्रकार आवरक देव के रूप में इनको वैदिक देवकुल में अधिक महत्वशाली स्थान प्राप्त हो गया है। स्वरूप, अन्य अनेक वैदिक देवों के समान वरुण के भी हाथ, पैर, मुंह, आँख इत्यादि अवयवों का उल्लेख ऋग्वेद में प्राप्त होता है। सूर्य को उनका नेत्र कहा गया है। सूर्य के पास असंख्य किरणें हैं, अतः वरुण को भी हजार नेत्रों वाला कहा गया है। इसी प्रकार अग्नि को वरुण का चेहरा कहा गया है। वे स्वर्णिम चादर ओढ़ते हैं, चमकीला वस्त्र धारण करते हैं। वरुण का रथ सूर्य की भांति देदीप्यमान है। इसमें एक आसन और एक चाबुक सदैव विद्यमान रहता है। वरुण के रथ को 2 सुंदर अश्व खींचकर ले जाते हैं। वे अपने महल में बैठकर मनुष्यों के सभी कार्यों का निरीक्षण करते हैं। वज्र एवं पाश उनके प्रमुख शस्त्र हैं। निवास स्थान, वरुण सर्वोच्च लोक में विद्यमान अपने स्वर्णमय प्रासाद में निवास करते हैं। पितृगण उसी प्रासाद में जाकर उनका दर्शन करते हैं। उनके प्रासाद में सहस्र द्वार हैं। स्वर्ग उन्हें धारण नहीं कर सकता, अपितु संपूर्ण स्वर्ग एवं भूलोक उनके भीतर निहित है। वे सबको धारण करने वाले तथा सर्वव्यापी देव हैं। कार्य, वरुण का प्रधान कार्य जल बरसाना है। नदियों को प्रवाहित करना इन्हीं के वश में है। मनुष्यों के कार्यकलापों का निरीक्षण करना इनका नैतिक गुण है। ये द्यूलोक एवं पृथ्वीलोक को स्थिर किए हुए हैं। वे ही अग्नि को जल में, सूर्य को आकाश में तथा सोम को पत्थरों पर स्थान दिए हैं। वे संपूर्ण संसार पर शासन करते हैं, संपूर्ण जगत की रक्षा करते हैं। सूर्य के गमन हेतु मार्ग का निर्माण करने वरुण ने ही किया है। चंद्रमा और तारे इन्हीं के आदेश से अपने अपने कार्यों में लगे रहते हैं। ऋतुओं का नियमन करना भी वरुण का ही कार्य है। वरुण की ही शक्ति के कारण नदियां समुद्र में गिरती हुई भी उसे जल से परिपूर्ण नहीं कर पाती। संसार में होने वाली सभी गुप्त से गुप्त बातों को वे जानते हैं। वे सर्वज्ञ हैं। प्रत्येक आँख की पलक गिरने तक का उन्हें ज्ञान है। वरुण का साम्राज्य पक्षियों की उड़ानों से भी दूर समुद्र तथा पहाड़ों की पहुँच से बाहर तक फैला हुआ है। नैतिक नियामक वरुण संसार के नैतिक अध्यक्ष हैं। वरुण देव नैतिक व्यवस्था का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को कठोर से कठोर दंड देते हैं। पाप कर्म करने एवं व्रत का उल्लंघन करने पर वे क्रुद्ध भी होते हैं। वे क्रुद्ध होकर पापकर्मी व्यक्ति को अपने भयंकर आयुध का पात्र बनाते हैं। उस व्यक्ति को अपने पाशों में बांधते हैं। वरुण नैतिकता के विरोधी व्यक्ति को पाशों की मार से दंडित भी करते हैं। वरुण द्वारा दंडित को जलोदर का रोग हो जाता है। पापों के फल भोग के लिए वरुण द्वारा किया गया दंड है। भौतिक आधार। प्रागैतिहासिक काल में यूनानी जीयस द्योंश तथा और नास के प्रकाश और घेरना ये दो गुण कहे गए हैं। ये दोनों ही गुण वरुण में पाए जाते हैं। वस्तुतः भारत ईरानी काल में ही वरुण का प्रभाव बढ़ गया था क्योंकि अहूर मजद वरुण का ही प्रतिरूप प्रतीत होता है। कतिपय प्राच्य विद्या विशारद वरुण का भौतिक आधार मानते हैं। वरुण देव को सातवां आदित्य भी कहा गया है। ओल्डेनवर्ग वरुण को सूर्य चंद्र तथा पंचग्रह का प्रतिरूप मानते हैं। ऋग्वेद में वरुण देवता से अपनी रक्षा के लिए एवं अपने अपराधों के पाप शमन के लिए अनेकशः प्रार्थनाएं की गई हैं। अक्ष ऋग्वेद संहिता में जहां एक ओर देवताओं की स्तुति करते हुए उनसे अभीष्ट की प्राप्ति के लिए याचनाएं की गई हैं, वहीं दूसरी ओर सामाजिक कुरीतियों एवं मानवीय दुर्व्यसनों को दूर करने से संबंधित सूक्तों का संकलन भी किया गया है। समाज में जब भोग विलास और शक्ति का उदय होता है तब द्यूत कर्म भी अपनी पराकाष्ठा पर पहुँच जाता है। ऋग्वैदिक युग में जुआ खेलना एक बहुप्रचलित सामाजिक दुर्व्यसन था। ऋग्वेद के दशम मंडल का 34वां सूक्त इस संबंध में पर्याप्त प्रकाश डालता है। अक्षों की संख्या एवं खेलने का स्थान। ऋग्वेद में अक्षों की संख्या के लिए 53 शब्द प्रयुक्त है। विद्वानों ने इस शब्द के अनेक अर्थ किए हैं, जैसे 15, 53 एवं 125। परवर्ती संहिताओं एवं ब्राह्मण ग्रंथों में पासा फेंकने से संबंधित व्याहृतियाँ की तालिकाएँ प्राप्त होती हैं। पासा फेंकने के लिए भूमि पर ही एक नीचा सा स्थान बना लिया जाता था। दांव पर रखी हुई वस्तु विज कहलाती थी। अक्षों का स्वरूप एवं प्रभाव। अक्षों को द्यूतकार देवता मानता है। उसके हृदय में अक्षों के प्रति वही श्रद्धा है जो शिल्पकार को अपने उपकरणों में, लेखक को अपनी लेखनी में तथा वणिक को अपनी तुला में होती है। अक्ष किसी वृक्ष के फलों की बीज रूपी विग्रह वाले होते हैं। इनका रंग भूरा होता है। अक्षों को किसी पात्र विशेष में डालकर भलीभांति हिलाकर द्युतपटल पर फेंका जाता है। द्युतपटल पर फूदकते हुए वे अक्ष बड़े ही मनोहारी दिखलाई पड़ते हैं। अक्षों को दिव्य अंगार स्वरूप एवं महाशक्तिशाली कहा गया है। अक्ष द्युतकार को उसी प्रकार आनंदित करते हैं जैसे सोमरस देवताओं को। अक्ष द्युतकार को जगाने का कार्य भी करते हैं। द्युतकार चिंता के वशीभूत होकर रात भर जागता रहता है। अक्षों के अंदर एक प्रकार की मोहिनी शक्ति होती है। द्युतकार इसी मोहिनी शक्ति के वश में रहता है। द्युतकार अनेक बार द्युत कार्य से विमुख होने का निश्चय करके भी ज्यों ही द्युतपटल पर पासों को फुदकते हुए देखता है त्यों ही अपने संकल्प को भूल जाता है। अक्षगण कभी भी उग्र से उग्र व्यक्ति के समक्ष भी पराजय को नहीं स्वीकारते। अक्षों की ध्वनि को द्युतपटल पर सुनकर जुआरी उसी प्रकार द्युत स्थल की ओर दौड़ पड़ता है जैसे कुलटा स्त्री संकेत स्थल की ओर दौड़ पड़ती है। अक्षों की विलक्षणता। द्युतपटल पर पड़े हुए भी अक्ष द्युतकार के मर्मस्थल को भेदने वाले होते हैं। स्वयं दंतविहीन होकर भी सहस्र द्युतकार को पराभूत करते रहते हैं। शीतल स्पर्श वाले होकर भी द्युतकार के हृदय को जलाते रहते हैं। स्वरूप से काष्ठवत होते हुए भी अक्ष किसी द्युतकार को क्षण मात्र के लिए बसा देते हैं तथा किसी को उजाड़ देते हैं। विजेता द्युतकार के लिए वे प्रसन्नतादायक तथा पराजित के लिए दुखप्रद भी होते हैं। दूत क्रीड़ा का कुपरिणाम। द्युतकार व्यक्ति को समाज निकृष्ट कोटि का व्यक्ति समझने लगता है। द्युतकार की पत्नी सास तथा अन्य शुभाकांक्षी व्यक्ति उससे द्वेष करते हैं। द्युतकार के प्रति कोई भी व्यक्ति दया भाव नहीं दिखलाता। द्युतकार एक बूढ़े किंतु मूल्यवान अश्व की भांति किसी के लिए प्रिय नहीं रह पाता। द्युतकार अनुकूल आचरण वाली अपनी पति परायणा पत्नी तक को दाव पर हार जाता है। दूसरों की पत्नियों को देखकर तथा सुसंस्कृत आवास गृहों को देखकर वह मानसिक क्लेश पाता है। द्वित कार्य का सबसे कठिन दुष्परिणाम तो यह होता है कि उसकी प्राणप्रिया पत्नी को दूसरे लोग अलिंगित करते हैं। जब दाव हारकर दूतकार विजेता दूतकार को दाव पर रखी हुई संपत्ति नहीं चुका पाता तो राजा के कर्मचारी उसे रज्जुबद्ध करके ले जाते हैं। उस समय उसके मित्र पिता माता भाई उसको देखना पसंद नहीं करते तथा यह भी कह डालते हैं कि हम लोग बंधे हुए इसको नहीं जानते। अमर संदेश। अक्ष सूक्त के अधिकांश भाग में द्वित कार्य के दुष्परिणामों को बतलाकर वैदिक ऋषि एक अमर संदेश प्रदान करता है कि अक्षों से कभी भी मत खेलो, खेती करो, कृषि द्वारा प्राप्त धन को ही आदर भाव से अपना समझो तथा उसमें ही आनंद का अनुभव करो। कृषि कार्य में ही गायें हैं, पालतू पशु हैं तथा संपूर्ण समृद्धि है। हे अक्षो, हमसे मित्रता करो, अपनी मोहिनी शक्ति का प्रयोग हम पर मत करो तथा सदैव हमारी सहायता करो। पुरुष सूक्त। ऋग्वेद संहिता के दशम मंडल में कतिपय ऐसे सूक्त उपलब्ध होते हैं जो देव स्तुतियों से भिन्न हैं। पुरुष सूक्त भी इन्हीं सूक्तों में से एक है। इस सूक्त से सृष्टि उत्पत्ति से संबंधित वर्णन किया गया है। इस सूक्त में आदि पुरुष के शरीर से देवताओं द्वारा सृष्टि का निर्माण किया जाना वर्णित है। इसमें सृष्टि रचना की प्रक्रिया को एक यज्ञ का रूप दिया गया है। कतिपय परिवर्तनों के साथ यह सूक्त सामवेद, शुक्ल यजुर्वेद तथा अथर्ववेद में भी उपलब्ध होता है। एक, पुरुष का स्वरूप। पुरुष सहस्र शिरो, सहस्र नेत्रों एवं सहस्र पैरों वाला देव है। यहाँ पर सहस्र शब्द उपलक्षण मात्र है। सहस्र का अर्थ असंख्य है। वह संपूर्ण भूमंडल को व्याप्त करने के पश्चात भी कुछ अवशिष्ट रहता है। इस कथन का तात्पर्य यह है कि पुरुष ही सर्वव्यापी ईश्वर है, जो संसार में सर्वत्र व्याप्त है तथा जीवों के सभी क्रियाकलापों का निरीक्षण करते हुए उसे कर्मफल भी प्रदान करता है। दो, पुरुष का विभाजन। विराट पुरुष का एक चौथाई भाग मायोपहित होकर जन्म मरण के बंधन में पड़ता रहता है। उसका तीन चौथाई भाग अपेक्षाकृत अत्यधिक उत्कृष्ट है तथा विनाश रहित है एवं द्युलोक में स्थित है। उसका एक चौथाई भाग ही जड़ और चेतन के रूप में व्यवस्थित होता है। तीन, पुरुष के द्वारा यज्ञ। सृष्टि की उत्पत्ति के लिए देवताओं, ऋषियों एवं साध्यों ने जो यज्ञ किया उसमें पुरुष को ही हवि के रूप में कल्पित किया। उस यज्ञ में घृत, ईंधन एवं हविष के रूप में क्रमशः वसंत, ग्रीष्म और शरद ऋतुओं का प्रयोग हुआ है। इस यज्ञ को मानस यज्ञ के प्रतीक के रूप में भी मानने की अवधारणा विद्वानों में व्याप्त है। इस मानस यज्ञ में सत्व, रजस एवं तमस गुण ही प्रधान है। इन्हें ही आज ईंधन और हवि के रूप में परिकल्पित किया गया है। चार, पुरुष द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति। उसी पुरुष से विराट की उत्पत्ति हुई। पशु पक्षी भी उसी से उत्पन्न हुए। पुरुष के मुख से ब्राह्मण, बाहुओं से क्षत्रिय, उरुओं से वैश्य एवं दोनों पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए। सूर्य, चंद्र, इंद्राग्नि और वायु आदि देवताओं की उत्पत्ति क्रमशः पुरुष के नेत्र, मन, मुख और प्राण से हुई है। उपर्युक्त देवों के निवास के लिए द्युलोक, अंतरिक्ष एवं पृथ्वी लोक की उत्पत्ति क्रमशः शीर, नाभि एवं पादों से हुई। ऋक, यजु, सामन एवं छंदस की भी उत्पत्ति उसी से हुई है। हिरण्यगर्भ प्रजापति। ऋग्वैदिक देवताओं के स्वरूप का अध्ययन करने से स्पष्ट हो जाता है कि ऋग्वेद में एक परम सत्ता की स्तुति विविध नामों से की गई है। ऐसा इसलिए है कि सभी देवताओं की स्तुति में गुण साम्य दृष्टिगत होता है। हिरण्यगर्भ का स्वरूप भी इस तथ्य का अपवाद नहीं कहा जा सकता। प्रजापति का आविर्भाव युगांत काल में संपूर्ण सृष्टि को महान जलराशि आवृत कर लेती है। उसी से देवताओं के स्वरूप तथा बीज रूप में स्थित हिरण्यगर्भ नूतन सृष्टि संपादनार्थ आविर्भूत होता है। प्रजापति द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति। प्रजापति ने अपनी महिमा से सर्वत्र व्याप्त जल को इस योग्य बना दिया कि वह जल सृष्टि रूप में वर्तमान प्रजापति को गर्भ के रूप में धारण कर सके तथा सृष्टि उत्पन्न करने में समर्थ अग्नि को उत्पन्न करे। सृष्टि की समुत्पादिका जलराशि को भी उत्पन्न करने वाला प्रजापति ही है। वह जड़ चेतन सबका उत्पादक है। वह आत्मदा बलदा भी है। जड़ चेतन उभयविध जगत के आधारभूत लोकों को निर्मित करने का कार्य भी प्रजापति ही करता है। उसी ने पृथ्वी एवं द्युलोक को भी निर्मित किया। प्रजापति का व्यापकत्व एवं आधिपत्य। प्रजापति ही संपूर्ण सृष्टि को धारण करके उसमें व्याप्त है। वर्तमान जगत तथा भूत जगत को प्रजापति ने ही व्याप्त कर रखा है। सूर्य को भी धारण करने वाला प्रजापति ही है। उसी को आधार बनाकर सूर्य उदित होता है तथा प्रकाशित होता है। वह सभी द्विपद एवं चतुष्पद जीवों का शासक है। प्राणियों के जन्म और मृत्यु उसी के अधिकार में है। उसके प्रभाव से द्युलोक एवं पृथ्वीलोक के स्वामी कांपते रहते हैं। विभिन्न दिशाओं उपदिशाओं पर भी उसका आधिपत्य है। प्रजापति की पूजनीयता। वैदिक ऋषि अपने उपास्य देव की पूजा करते हुए नहीं अघाता है। वह अपने सभी कार्यों की सिद्धि के लिए अपने उपास्य देव का आवाहन करता है। प्रजापति का आवाहन करते हुए ऋषि कहता है कि हे सत्य धर्मा प्रजापति, तुमने पृथ्वी तथा द्यूलोक को उत्पन्न किया है तथा आह्लादकारी चंद्रमा एवं विस्तृत जलराशि को उत्पन्न किया है, अतः हमें पीड़ित मत करो। हे प्रजापति, तुमसे अतिरिक्त दूसरे किसी ने भी इस संपूर्ण उत्पन्न पदार्थों को व्याप्त नहीं किया है। मैं जिस किसी इच्छा से तुम्हें हविष प्रदान करूँ, वे हमारी इच्छाएं पूर्ण हो तथा हम धनु के स्वामी बन जाएं। प्रजापति का अभिधान। ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार एक बार इंद्र ने प्रजापति से अपने लिए उनके महत्व की याचना की। इस पर प्रजापति ने इंद्र से कहा कि मैं अपना महत्व तुम्हें प्रदान करके स्वयं क्या बनूंगा। इंद्र ने उत्तर दिया कि जो कुछ तुम कह रहे हो वही अर्थात बन जाओ। इस प्रकार प्रजापति का नाम क पड़ गया। वाक। ऋग्वेद के आध्यात्मिक सूक्तों में वाक सूक्त का स्थान महत्वपूर्ण है। इस सूक्त का देवता और ऋषि दोनों वाक ही हैं। वाक को ब्रह्म के शब्दात्मक का शक्ति के रूप में चित्रित किया गया है। वाक का स्वरूप। वाक संपूर्ण जगत की स्वामिनी है। ब्रह्म से साक्षात्कार पूर्वक तादात्म्य स्थापित कर लेने के कारण वह ब्रह्म स्वरूपा है। वाक ने पृथ्वी लोक तथा द्यूलोक को आच्छादित कर रखा है। सर्वदेश रूपकता। इस सूक्त में वाक को ही सत्ता के रूप में स्वीकार किया गया है। अन्य देवी देवता भी वाक के ही रूप हैं। वाक ही रुद्रों और वसुओं के रूप में विचरण करती है तथा वही आदित्यों और विश्व देवों के रूप में भी विचरणशील है। मित्र वरुण इंद्र अग्नि और अश्विन देवताओं को वाक ही धारण करती है। शत्रु संहारक सोम त्वष्टा पुषा और भग भी उसी के स्वरूप हैं। इतना ही नहीं, सभी यज्ञ देवताओं में वह सर्वप्रधान है। वाक के कार्य। वाक को लोकोपकारिणी देवी के रूप में चित्रित किया गया है। वाक सोमाभिषव करने वाले देवताओं को, हवि प्रदान करने वाले यजमान को धन संपत्ति प्रदान करती है तथा उसकी रक्षा भी करती है। ब्रह्मद्वेषी समाजोत्पीड़िकों के विनाश के लिए रुद्र के धनुष को तानने वाली वाक देवी लोकहितार्थ अनेक अशुभ शक्तियों से युद्ध करती है। वाक जिसे चाहती है उसे बलशाली ब्रह्मनिष्ठ ऋषि एवं सुंदर बुद्धि युक्त बना देती है। वाक वायु के समान स्वच्छंद रूप में प्रवर्तित होती है। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि वाक ही पृथ्वी एवं द्यूलोक को उत्पन्न करने वाली है। वाक ही संपूर्ण लोकों में व्याप्त है। वाक का स्वरूप तो पृथ्वी एवं द्यूलोक से भी परे है। सायण आदि वैदिक व्याख्याकार इस वाक को ब्रह्म साक्षात्कार कर लेने वाली अम्भृड की पुत्री वाक नामनी ऋषिका द्वारा की गई अपनी ही स्तुति स्वीकार करते हैं। इस प्रकार यह निश्चित ही ब्रह्म की शब्दात्मिका शक्ति है। संज्ञान। संज्ञान सूक्त ऋग्वेद संहिता के दशम मंडल का अन्यतम सूक्त माना जाता है। इसमें केवल चार मंत्र हैं। प्रथम मंत्र में अग्नि देवता की स्तुति करते हुए कहा गया है कि हे अग्निदेव, तुम सभी उपासकों की इच्छा पूर्ति करते हो, अतः हमारे लिए भी धन आदि अभिलषित पदार्थों को प्रदान करते रहो। इस सूक्त के अवशिष्ट मंत्रों में संज्ञान देवता की उपासना की गई है तथा एक ही साथ बातचीत करने, विरोध का त्याग करके साथ साथ रहने तथा एक दूसरे से सौहार्दपूर्ण व्यवहार करने की कामना की गई है। जिस प्रकार प्राचीन कालीन हमारे पूर्वज आपस में सौमनस्यता का व्यवहार करते थे, उसी प्रकार आपसी क्रियाकलाप करने की प्रार्थना की गई है। ऋत्विक तथा यजमान का व्यवहार भी एक समान होने की कामना इस सूक्त में की गई है। शिव संकल्प। शुक्ल यजुर्वेद के 38वें अध्याय में यह सूक्त प्राप्त होता है। इसमें ऋषि अपने मन को कल्याणकारी संकल्पों से युक्त होने की कामना करता है। मनोविज्ञान में मन को जीवन का एक अनिवार्य तत्व स्वीकार किया गया है। मन के द्वारा ही सभी कर्मेंद्रियां एवं ज्ञानेंद्रियां अपने अपने विषयों को ग्रहण करने में समर्थ होती हैं। इसलिए भारतीय दर्शनों में मन को उभयेंद्रिय माना गया है। मन के द्वारा ही अप्रमेय एवं ध्रुव सत्य का दर्शन होता है। मन सैवानुद्रष्टव्य मेतद प्रमेयम ध्रुवम। मन के कार्य। प्रस्तुत सूक्त में वर्णित मन के कार्यों को इस प्रकार प्रतिपादित किया जा सकता है। मन जागृत अवस्था में क्षण मात्र में अति दुर्गमन कर सकता है तथा दूसरे क्षण प्रत्यागमन भी कर सकता है। दूरगामी शक्तियों में सर्वशक्तिमान मन ही है। मन के द्वारा ही भूत, वर्तमान एवं भविष्यत सब कुछ सम्यक रूपेण जाना जाता है तथा मन के द्वारा ही सभी प्रकार के यज्ञ आदि संपन्न किए जाते हैं। जिस प्रकार रथ की नाभि में आर्य तीलियां प्रतिष्ठित होती हैं, उसी प्रकार ऋक, यजुष एवं साम मन के अंतर्गत ही प्रतिष्ठित होते हैं। मन ही सात होता से युक्त यज्ञ का विस्तार भी करता है। जिस प्रकार चतुर सारथी लगाम के द्वारा घोड़ों को नियंत्रित करता है, उसी प्रकार मन मनुष्यों को संचालित करता है। शिव संकल्प का महत्व प्रस्तुत सूक्त ऋग्वेद के खिल भाग में भी प्राप्त होता है। वहां पर इस सूक्त में 13 ऋचाएं हैं। खिलानुक्रमणी में इस सूक्त को शिव संकल्प नाम दिया गया है। अग्निपुराण में इस सूक्त के जप से मन के शांत होने का विधान किया गया है। शिव संकल्प जापेन समाधि मनसो लभेत येनेदमिति जप्त्वा समाधि विन्दते परम। ऋग्विधान में भी अग्निपुराण के कथन का समर्थन किया गया है। येनेदमिति वै नित्यं जपेत नियत व्रतः समाधि मनस्तस्तेन विन्दते नैव मुह्यति। मनुस्मृति में शिव संकल्प सूक्त को पापहारी बतलाया गया है तथा टीकाकार मेघातिथि ने भी श्राद्ध के समय इस सूक्त के पाठ का विधान किया है। खिलानि श्री सूक्त शिव संकल्पादीनि श्राद्धे ब्राह्मणान श्रावयेत। प्रस्तुत सूक्त में मन के शुभ संकल्पों से युक्त होने की कामना की गई है। यदि व्यक्ति का मन शुभ संकल्पों से युक्त होगा तो उसे इस जीवन में किसी प्रकार के दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि सभी दुखों का मूल कारण मन की असंतुष्टि ही है। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस सूक्त में पृथ्वी के स्वरूप एवं उसकी उपयोगिता पर विशद विवेचन किया गया है। पृथ्वी की उत्पत्ति एवं प्राकृतिक स्वरूप। उत्पत्ति से पूर्व पृथ्वी की सत्ता समुद्र में जल के भीतर थी। विद्वान लोगों ने उसे अपने पराक्रम से प्राप्त किया। पृथ्वी का सत्य से आवृत एवं अनश्वर हृदय परम व्योम में स्थित है। पृथ्वी का कुछ भाग जलमय है तथा कुछ स्थलमय। उसमें बाधा रहित ऊंचे नीचे तथा समतल भाग हैं। इसी पृथ्वी पर समुद्र नदियां तथा अनेक जलाशय भी स्थित हैं। पृथ्वी पर झरने भी प्रवाहित होते रहते हैं। इसमें श्वास लेने वाले एवं गतिशील प्राणी आनंद पूर्वक रहते हैं। पृथ्वी पर ही चारों दिशाएं हैं, अन्न है एवं अनेक कृषक जन हैं। यह पृथ्वी भूरी काली एवं लाल वर्णों वाली तथा अचल है। पृथ्वी से संबंधित पुरा कथाएं। विष्णु ने इसी पृथ्वी को अपने 3 डगों में नापा था। दोनों अश्विनी कुमारों ने भी इसे नापा है। अश्विनी कुमारों से तात्पर्य है सूर्योदय के पूर्व एवं सूर्यास्त के बाद का संधिकाल। इन दोनों संधिकालों के मध्य पृथ्वी प्रकाशित रहती है। विष्णु द्वारा पृथ्वी को नापा जाना रूप क्रिया का तात्पर्य है। सूर्य द्वारा पृथ्वी को प्रकाशित करना। इंद्र ने भी पृथ्वी को शत्रु रहित कर दिया है। इस पृथ्वी पर हमारे पूर्वजों ने अनेक विध पराक्रम युक्त कार्य किए हैं। उपकारिता एवं दानशीलता। पृथ्वी प्राणी मात्र को अपना अमृतुल्य जल उसी भांति प्रदान करती है जैसे माता अपने पुत्र को दुग्ध प्रदान करती रहती है। पृथ्वी हमारे लिए उसी प्रकार धन प्रदान करती है जैसे गाय दुग्ध दान करती है। वह सबका समान रूपेण उपकार करने वाली है। माँ जिस प्रकार अच्छे बुरे सभी बच्चों को प्यार करती है, उसी प्रकार पृथ्वी भी बिना किसी भेदभाव के सभी जीवों को धन अन्न इत्यादि प्रदान करती है। विविध धर्मावलंबी विभिन्न भाषा भाषी अपनी इच्छानुसार आवास गृह बनाकर रहने वाले सभी लोगों को धारण करती है। लोग उसके सौजन्य के कारण ही पृथ्वी से गाय अश्व पक्षी प्रतिष्ठा ऐश्वर्य एवं वर्चस्विता की याचना करते हैं। पृथ्वी के धारक तत्व समाज में निरंतर अच्छाइयाँ एवं बुराइयाँ दोनों ही विद्यमान रहती हैं, परंतु पृथ्वी को सत्य रित महनीयता उग्रता दीक्षा तप ब्रह्म और यज्ञ धारण किए हुए हैं। अर्थात पृथ्वी पर जब तक उपर्युक्त गुणों की सत्ता बनी रहेगी तब तक पृथ्वी टिकी रहेगी, अन्यथा वह जलमग्न हो सकती है। पृथ्वी से विविध प्रार्थनाएं। वैदिक ऋषियों ने पृथ्वी से लोकों को विस्तृत करने के लिए तथा समृद्धि प्रदान करने के लिए विविध प्रकार से प्रार्थनाएं किया है। गौओं और अन्नों को प्रदान करने के लिए, वर्चस्व के लिए तथा जल और तेजस्विता से संपृक्त करने के लिए विविध प्रकार की प्रार्थनाएं भी की गई हैं। अंत में ऋषि पृथ्वी से प्रार्थना करता है कि हे पृथ्वी, मेरे लिए तुम उसी प्रकार भूमि विस्तृत कर दो जैसे माता पुत्र के लिए दूध प्रदान करती हैं। विषयानुक्रमणी क्रम संख्या सूक्त नाम मंडल संख्या सूक्त संख्या पृष्ठ संख्या 1 अग्नि सूक्तम 1 1 1 2 सवित्री सूक्तम 1 35 9 3 विश्व देवाह सूक्तम 1 89 23 4 विष्णु सूक्तम 1 154 37 5 इंद्र सूक्तम 2 12 46 6 रुद्र सूक्तम 2 33 64 7 उषस सूक्तम 3 61 82 8 पर्जन्य सूक्तम 5 83 90 9 उषह सूक्तम 7 77 102 10 वरुण सूक्तम 7 86 110 11 अक्ष सूक्तम 10 34 121 12 पुरुष सूक्तम 10 90 100 39, 13 हिरण्यगर्भ सूक्तम, 10 121 154, 14 वाक सूक्तम, 10 125 167, 15 संज्ञान सूक्तम, 10 191 178, शुक्ल यजुर्वेद, 16 शिव संकल्प सूक्तम, 34 1 से 6 182, अथर्ववेद, 17 पृथ्वी सूक्तम, 12 1 190, परिशिष्ट 1 209, परिशिष्ट 2 217, परिशिष्ट 3 220। प्रथम भाग नवीन वैदिक संचयनम्।